Purani Bhama Stigatita
Yadi Ketanye Purani Bhama Stigatita
Samam Bhanti
Bhavya Yajadeni Lasanto Tarekita जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो
जगत साक्षी मार्ग
प्रगटन परो चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं
अतां चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं
जनान् कोपापायं प्रकटयति वाक्यन्तरमपि
पापायं प्रकटयति वाम्यन्तरं
स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला
स्फुटं मूर्तिर्यस्य
प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे
महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु
मे नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम्
केन्द्राली मुकुटमणिपादाम्भोज
द्वयमिह यदीयं तनुव्रतां
लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं
भवज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वास्मृतमपि
भवज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वास्मृतमपि
अब सुनो, बोलने से पहले सुनो, बोल रहे मेरे साथ सब गलत बोल रहे हैं। चौथी वाली लाइन पहले सुन लो कि कैसी बोलना, फिर बोलना।
महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे
महावीर स्वामी नयन पथ गामी
चाभावेन प्रमुदित मनादर दुरहिह
चाभावेन
प्रमुदित मनादर दुरहिह क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि
नास्ती स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि
लभन्ते सर्व भक्ता शिव सुख समाजम किं तदा
लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किं तदा
महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे
अगर आप डबल लिंक करेंगे और महावीर स्वामी बोलेंगे तो आपकी रिदम नहीं बनेगी और सभी लोग महावीर स्वामी बोल रहे हैं जबकि महावीरस स्वामी क्या होता है डबल अक्षर होने पर एक अक्षर एक्स्ट्रा जोड़ने की फैसिलिटी मिलती संस्कृत में तो महावीरस स्वामी आधा सा और एक्स्ट्रा ताकि हमारी ट्विनिंग ठीक ठीक बन जाए। गण स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो गण स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मा के को नृपति वर सिद्धार्थ तनया
रामा के को नृपति वर सिद्धार्थ तनया
अजन्मापी श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गतिर
श्रीमान विगत भवरागो गति
महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे
महावीर स्वामी नयन पथ गामी
गंगा विविध नय कल्लोल विमला
गंगा विविध नय कल्लोल विमला
ग्रह ज्ञानां बोभिर् जगति जनतां यास्नपयति
ज्ञानां गोविर् जगति जनतां यास्नपयति
इदानीमप्येषा बुधजनमरालैः परिचिता
इदानीमप्येषा बुधजनमरालैः परिचिता
महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे
महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे
अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटा
अनिर्वारो द्रेक
त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थाया मपि निज बलाद्येन विजिता
कुमारावस्थाया
स्फुरन् नित्यानन्द प्रशम पद राज्याय सजिना
नित्यानन्द
प्रशम पद
मद राज्याय सजिना
महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे
महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे
महामोहातंक प्रशमन पराक स्मिग विष
महामोहातंक
प्रशमन पराक स्मिग विष निरापेक्षो बंधुर विदितमयी मामंगलकर
निरापेक्षो बंधुर विदितमयी
शरण्यः साधूनां भवभयभ्रतामुत्तमगुणो स्तोत्रम् भक्त्या भागेन्दुनाकृतम् या पठेत् शृणुयाच्चापि आदमी सच्चाई की राह पे चलता है लेकिन लोग उसे मूर्ख समझते हैं। समझेंगे क्यों नहीं समझेंगे? जब आप ऐसी चाल चलोगे तो लोग मूर्ख समझेंगे। ऐसे ही संसार है, अच्छी राह चलेंगे तो जैसे बहुत सारे पागल लोग मिल जाएं तो एक समझदार को वो पागल कहेंगे। हाँ, उनको वो समझदार आदमी पागल मालूम पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी तो पागल की, तो वो अपने को मानते हम सही, और ये जो व्यक्ति है एक वो गड़बड़। तो जब बेईमानों की मेजॉरिटी हो उसमें एक आध ईमानदार हो तो वे बेईमान साबित हो जाएगा वो, कि देखो मेजॉरिटी सब एक तरफ जा रही और आप एक अकेले। वैसे ये भी है भैया, लेकिन अब ऐसा सोचकर वो अपने जीवन में झूठ का सहारा लेने लगता है यदि, तो ये उसकी गलती है। क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या फिर अपने जीवन में कितनी भी कठिनाई है उसे सच्ची राह पे ही चलना चाहिए। ऐसा ही है भैया, कितनी भी मुश्किलें आए, मैं हमेशा बच्चन की वो चार लाइन आपको सुनाता हूँ, मेरी मृदुता बहुत गई रगड़ी मछली है, मेरी मृदुता बहुत गई रगड़ी मछली है, पर नहीं हुई कठोर लगता है असली। अगर आपके अंदर वास्तव में सच्चाई है तो फिर कितना भी हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े, कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन सच्चाई का आनंद एक बार मिल जाता है तो फिर बेमुश्किलें उस आनंद को हमें कहना चाहिए लेने से रोक नहीं पाती हैं। एक बार जैसे किसी को किसी अच्छी चीज़ का स्वाद मालूम पड़ जाए, फिर वो कितनी भी चीज़ें उसको दी जाएं, वो उनको पसंद नहीं करता। इसी तरह सच्चे रास्ते पे चलने वाला मुश्किलों के बावजूद भी सच्चा रास्ता नहीं छोड़ेगा। अगर छोड़ देता है तो इसके मायने हैं कि उसने अभी सच्चे रास्ते का वास्तव में आनंद नहीं लिया है। कहना तो यही पड़ेगा भैया, मंदिर जाते समय चावल क्यों चढ़ाते हैं? अच्छी बात है, हमने और कोई द्रव्य क्यों नहीं चुनी? हम गेहूं चढ़ा सकते थे, हम ज्वार चढ़ा सकते थे, हमने चावल ही चुना।
चावल चुनने के पीछे हमारा उद्देश्य रहा। चावल सीधे सीधे नहीं उगते हैं, कभी उगते हैं चावल, धान उगती है और धान के ऊपर से पहले एक छिलका हटाना पड़ता है, फिर उसके बाद जो लालिमा है वो हटानी पड़ती है, तब एकदम वाइट, बहुत स्वच्छ, निर्मल और उज्जवल चावल प्राप्त होते हैं। वो इस बात के प्रतीक हैं, भगवान के सामने हम चढ़ाते हैं कि भगवान ऐसे ही मेरे आत्मा में चार घातिया कर्म जो छिलके की तरह लगे हैं वो उतर जाएंगे, और फिर लालिमा की तरह मेरे चार अघातिया कर्म जब उतर जाएंगे तब जाकर के मैं अपने उस उज्जवल स्वभाव को प्राप्त करूँगा। मैं चावल चढ़ा करके जैसे इन चावलों ने उज्जवलता प्राप्त की है वैसे ही मैं भी उज्जवलता प्राप्त करना चाहूँ। चावल को दोनों अंगुलियों के बीच सीधा रख कर के दबाएँ, अंगुलियों में दर्द होने लगेगा लेकिन टूटेगा नहीं। चावल अखंडता का प्रतीक है, ऐसे ही हम भी अपने अखंड पद को प्राप्त चाहते हैं, अक्षय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कभी एक बार मिलने के बाद फिर कभी छीने नहीं हमसे, कभी छूटे नहीं। और तीसरी चीज़, चावल को बोने पर उगता नहीं है चावल, धान बोने पर उगती है, चावल नहीं उगता। जैसे चावल नहीं उगता है ऐसे ही मैं भी अब संसार में बार बार जन्म और मरण नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने चावल चढ़ाए हैं। ऐसी तीन विशेषताएं चूँकि चावल की हैं इसलिए हमारे पुराने लोगों ने और चावल ही चुने हैं भगवान के सामने चढ़ाने के लिए, इसलिए हम लोग चावल चढ़ाते हैं। चावल चढ़ाते समय क्या भावना भानी चाहिए? यही भावना भानी चाहिए, हमारा जीवन उज्ज्वल बने, हमारा जीवन अखंड हो और हम जन्म मरण से पार हो जावें। यही विशेषताएँ हैं तीनों चावल की। भगवान जी की प्रतिमा की तरफ पीठ क्यों नहीं करनी चाहिए? देखो भैया, जिसकी तरफ पीठ की जाती है तो इसके मायने हैं कि हम उसे नहीं चाहते, एक अर्थ तो ये है, हैं? तो कभी भी जो पूज्य पुरुष हैं उनको पीठ नहीं दिखानी चाहिए, इसका मतलब है कभी उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पीठ दिखाना यानी इग्नोर करना, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए, हमेशा उन्हें अपने सम्मुख रखना चाहिए। ये एक आशय तो ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि बाहर जाते समय हम भले ही भगवान की तरफ पीठ करना नहीं चाहते लेकिन पीठ तो हो ही जाएगी, तो उस समय हम क्या सोच करके बाहर निकल रहे हैं कि भगवान अभी जब मैं आपकी तरफ आया था तो संसार की तरफ पीठ थी और आप मेरे सामने थे, मैंने आपकी भक्ति करी, पूजा करी, आपने मुझे साहस दिया, दृढ़ता दी, विश्वास दिया, अब मैं उस साहस, दृढ़ता और विश्वास इन सब को लेकर के बाहर जा रहा हूँ। अब संसार की तरफ मेरी दृष्टि है, आपकी तरफ पीठ नहीं है, वो तो मैंने इसलिए आपकी तरफ अपनी पीठ करी है कि जरा थपथपा तो दो, संसार से जूझना पड़ेगा।
इसलिए तो हो सकता है कि अगर ऐसा लेना चाहें तो दोनों, पीठ दिखाना मतलब इग्नोर करना, लेकिन हम पीठ नहीं दिखाते हैं पूज्य पुरुषों को क्योंकि उन्हें हम इग्नोर नहीं करते हैं बल्कि उनसे हम कुछ चाहते हैं, उन्हें अपने
हमेशा सम्मुख रखना चाहते हैं। इसलिए छोटे महाराज मेहंदी लगे हुए हाथों से हार नहीं लेते हैं, आप ले लेते हैं तो ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत है? देखो, अगर आपको महाराज को हार देना है तो फिर आपको मेहंदी अलग करना पड़ेगी,
लगाना पड़ेगी, ये नहीं कह रहा हूं, बिना लगे वाले भी दे सकते हो, लगे वाले अपन को तो ज्यादा लाभ है, अपन को दोनों ही दोनों प्रकार के लोग दे सकेंगे, महाराज को एक ही प्रकार के लोग दे सकते हैं। आधे लोग तो कम ही होगा, यहाँ तो सब लोग लगाते हैं, बूढ़े लोग भी लगाते हैं, बड़े बड़े लोग भी लगाते हैं, अब कोई ना कोई की बहन तो होगी, कोई बड़ी सारी अम्मा भी हो 80 साल की वो भी किसी की बहन है, और कोई भी पर्व आएगा तो बहन तो लगाएगी, मेहंदी तो लगाएगी, लेकिन अपने यहाँ ऐसा लिखा है कि बहुत ज्यादा गाढ़ा रंग हो जाने पर जीव राशि के उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा रहती, इसलिए दो चार दिन अगर वो फेंट पड़ जाए, एकदम डार्क जो अपन ने लगाई है वो डार्कनेस की वजह से जीव राशि बहुत जल्दी आकर्षित होती है उसकी तरफ, रेड कलर की तरफ विशेष रूप से, और उसमें भी डार्क। तो इसलिए शायद कहीं कहीं पर मैंने सुना ऐसा कि 2-3 दिन वो पुरानी पड़ जाती है, तब फिर कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो नई नई भी है तब भी चम्मच से तो दे ही सकते हैं, चम्मच में तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब महाराज को नहीं हमारे लिए भी है। प्लास्टिक की बिन
शिकायत नहीं, वो ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं लेते, कारण बताओ, नोटिस जारी हो गया, कारण बताओ। प्लास्टिक की बिंदी से आप आहार क्यों नहीं लेते हैं? भैया प्लास्टिक की बिंदी जो लगी रहती ना, उसमें जो एडहेसिव है वो गड़बड़ हो सकता है, उसमें जो चिपकाने का पीछे लगा रहता ना, वो पहले सरेस वगैरह जो खराब चीज थी, जो कि जानवरों के हड्डियों से उसके खुरों से एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती थी, संभव है आज के समय में कितनी चीज़ें हैं ऐसी जिनमें कि हमें नहीं मालूम पड़ता और बेईमानी करते हैं लोग, तो क्यों अपन आहार के समय उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज़ उपयोग कर लेवें? मना नहीं है उसके लिए कि आप कुछ भी नहीं लगावें, लगाएं बिंदी तो लगाएं, लेकिन कोई अल्टरनेट उसका खोज लेवें तो ज़्यादा अच्छा रहे, तो विकल्प नहीं होगा, उसके छू जाने का विकल्प हो जाता है। मंदिर में जब माला फेरते हैं तो ध्यान क्यों भटकता है, इसका कारण क्या, कारण से ध्यान भटकता है? भैया अपन लोग अपने मन को 24 घंटे तो संसार में घुमाते हैं, वो 5 मिनट में चाहते हैं कि वो रुक जाए, अगर पंखा चल रहा है और वो कोई ऑफ कर दे तब भी फोकट में 5 मिनट तो चलता ही रहता हूँ, ऐसा ही अपना मन है, 24 घंटे में 23 घंटे 50 मिनट तो दुनिया में घुमाया और 10 मिनट बैठ गए हाथ बंद के, हाथ पे हाथ धरे, तो वो तो जहाँ का संस्कार है वहीं जाएगा, कम से कम 2 घड़ी चुपचाप बैठो, 2 घड़ी बैठने पर, 48 मिनट बैठने पर 30 सेकंड को रुक जावे अगर, तो पीठ थपथपाना सक्सेस, मिल गई सफलता, ऐसे नहीं रुकता वो, तो जिन विषयों के कांटेक्ट में हमेशा रहता है उन्हीं की तरफ जाता है, हमें अभ्यास बदलना पड़ेगा, सुबह शाम रोज अभ्यास करेंगे तब फिर मन हमारे कंट्रोल में होगा, हम जहां ले जाना चाहेंगे वहां ले जाए, और मन को सिर्फ डाइवर्ट करना, आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि मन को रोकने के मायने ऐसा नहीं है कि आप उसको पकड़ लें, नहीं, मन को पकड़ ही नहीं सकते ना रोक सकते, वो तो निरंतर विचार चलते हैं, अशुभ विचारों से शुभ विचारों में उसको डाइवर्ट कर दो, बस इतना ही हम आसानी से कर सकते हैं, अभ्यास करेंगे तो संभव भी है, इसलिए अपने को अभ्यास करना चाहिए। मंदिर से दूर चौराहे आगे कोई मुनि महाराज चौके की तरफ आते ही नहीं है, एक ही दिन में घबरा गए, बताओ अभी हम आज धीरे से यहीं रुक गए तो बड़बड़ा गए, वो क्या वहां तक नहीं आ रहे, तो कल का पक्का रहा फिर न्योता। दूर वालों की तरफ भी ध्यान दें, महाराज जी आपसे कह रहे हैं वो हम तो गए थे कल दूर वालों से। नहीं सब जगह जाते हैं, देखो जब दूर जाने लगेंगे तो पास वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई नहीं आया, जब पास चले जाते हैं तो दूर वाले कहते हैं कि कोई नहीं आया, दोनों जगह जाते हैं भैया, निमंत्रण से नहीं जाते, बस इतने ही ध्यान रखें, नहीं तो आप निमंत्रण कर दो। सम्यक चारित्र का वर्णन करते हुए श्री शुभचंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानानों में लिखा है कि जिन धर्म वृक्ष की जड़ विषयों से विरक्ति है, जिसकी बड़ी शाखा संयम है, जिसमें यम नियम आदि पत्ते हैं, उपशम भाव पुष्प हैं, ज्ञानानंद रूपी जिसके फल हैं, जो पंडित रूपी पक्षियों से सेवित हैं, हाँ लिखा है ऐसा, ऐसे धर्म वृक्ष को मुनि भी हों तो भी चोरी रूप तीव्र अग्नि से भस्म, चोरी रूप नहीं कुछ और होना चाहिए, पंडित रूपी पक्षियों से सेवित हैं। ऐसे धर्म वृक्ष को मुनि भी हो तो भी चोरी रूप तीव्र अग्नि से भस्म कर डालते हैं, और कुछ होना चाहिए। तपस्या रूप अग्नि तो जमता है मामला, लेकिन हिंदी में ऐसा तो नहीं मिस्टेक हो गई, संस्कृत में देख लें अपन। अच्छा, अब प्रश्न यह है कि ऐसे धर्म वृक्ष का चोरी रूपी अग्नि से किस प्रकार भस्म किया जा सकता है। श्लोक है, विषय विरति मूलम संयमोद्धाम साखम। फिर उसके बाद यमदशलक पुष्पम ज्ञान लीला फलाटकम फलाटम विबुदजन सकुंतई सेवितम धर्म वृक्षम दहति मुनिरपि हस्ते यति ब्रानलेन। इस्ते नहीं है वो, अस्ते है। अपन ने इस्ते से चोरी निकाल लिया, अस्ते रूपी, हाँ, अर्थात अचोरी लेंगे, वहां पर चोरी नहीं निकलेगी। वही तो मैं सोच रहा था कि कैसे निकल गया ऐसे। तीव्र अनलेना अस्तेय रूपी, तीव्र अनल के द्वारा, सही है भैया। संस्कृत में, हिंदी करने वालों ने गड़बड़ कर दी उसमें, ये हो सकता है। महाराज गंधोदक कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। एक अम्मा जी थी 70-75 साल की, और वो हमको दमों में मिल गई। तो वो कहने लगे कि महाराज, उनने देख लिया होगा किसी को, लोग ऐसा देख लेते दूसरे को, दूसरा कुछ भी करे उसको बहुत जल्दी देख लेते कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा, अब इसको कैसे बताएं कि कैसा करना चाहिए। तो वो अम्मा जी कहने लगे, काय महाराज, कौन हाथ से गंधोदक लेना चाहिए, दाएं हाथ से कि बाएं हाथ से। अब हम क्या कहें उनको। हमने उनको कहा कि अम्मा जी, दो ही हाथ से ले लेना चाहिए, लड़ो घर में आप, ने दाएं से ने बाएं से। ऐसा ही हमें कहना है कि अपने यहाँ पर गंधोदक लगाने का वास्तव में तो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, माथे पर चढ़ाना, या कि उत्तमांग आँखों पर लगाना, या कि गले तक, यहाँ तक सीमित है। ये उत्तम अंग कहलाता है। गंधोदक का स्पर्श इसी जगह होना चाहिए। अन्यत्र कोई लगाता है तो उसे सावधानी रखनी चाहिए। और दूसरी बात, गंधोदक एक बार अपना हाथ माथे से लग गया, शरीर से लग गया, फिर वो हाथ गंधोदक में नहीं डुबाना। बस इतना विवेक रखें हम, अपने हाथ में अलग से ले लें, फिर जहाँ लगाना सो वहाँ लगाओ, क्योंकि बीमारी सीमारी हो जाती, मन मानता नहीं है तो फिर
इले।
हाँ, क्योंकि महाराज अभी सब जने जो है आपकी बात अगर मान रहे हैं कि महाराज कहते कि पी सकते हैं, पी सकते क्या,
पेटे में।
हाँ, नहीं, पीना नहीं चाहिए। देखो, पवित्र वस्तु है, उसको अभिनय नहीं होनी चाहिए। महाराज को हमने आहार दी है, क्यों लगाते। देखो, भगवान का जब अपन अभिषेक करते हैं तो क्यों करते हैं अभिषेक, बताओ। हे भगवान, आप तो निर्मल हो, लेकिन हम अपने राग द्वेष से मलिन हैं। हम अपने शरीर पर जल की धारा डालें तो गंदा जल निकलेगा, लेकिन आपके पवित्र शरीर पर हम जल धारा छोड़ करके अपने शरीर की मलिनता को दूर करना चाह रहे। आपके जैसा ही परम औदारिक शरीर हमें प्राप्त हो, इसलिए आपके परम औदारिक शरीर पर हम जल धारा छोड़ रहे हैं। उससे जो जल निकला है वो कैसा है, सुगंधित, गंदेन सहिता उद्गा गंधोदकः, सुगंधित जल को गंधोदक कहते हैं। और वो सुगंधित जल हम अपने माथे पर चढ़ा करके, अब अभिषेक तो देख लिया, अभिषेक से हमारे परिणाम निर्मल हो गए, अब हम उसको अपने माथे पर लगाते हैं और ये मान लेते हैं कि हम निर्मल हो गए। तो गंधोदक क्यों लगाया, अपने शरीर को और मन को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है ना। वाह, आहार दिया हमने महाराज को,
तो उन्होंने रात्रि भोजन त्याग के लिए किया, कहा 2 महीने का रात्रि भोजन त्याग कर दिया, लेकिन मन में सोच लिया था कि ये त्याग केवल घर में ही निभा पाएंगे, बाहर नहीं निकलेगा। महाराज क्या ये सही है, इसमें मुझे पाप तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा भैया, आपने अगर मन में ऐसा सोच लिया था तो कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसे कैसे लगेगा जब हमने मन, अब एक व्यक्ति ने तो मालूम, एक व्यक्ति ने क्या करा, उन्होंने कहा कि छोड़ो आपका आलू का त्याग है, कहते महाराज त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग, कहते महाराज जी रात्रि भोजन का त्याग, महाराज का रात्रि भोजन का त्याग, महाराज का ही आलू प्याज का त्याग, उसमें त्याग है, महाराज जी त्याग है, हाँ महाराज जी का त्याग है, त्याग है। ये बेईमानी कहलाएगी? सुनो, उसमें ऐसा कर लेना चाहिए कि अपन अपने घर में तो कम से कम, जब अपने, हम तो ऐसे ही देते हैं कि अपन जो अपने अपने शहर में हैं, बाहर जाएंगे तो फिर जैसी व्यवस्था बन जाएगी वैसा कर लेंगे, और जब तक अपने घर में हैं तो कम से कम रात्रि में नहीं खाएं, इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है विशेष रूप से, तो ऐसा कर लेना चाहिए, आपने मन में अगर सोचा है तो वैसा कर लें। क्या भक्तांबर और अन्न पाठ संस्कृत में पढ़ना ही जरूरी है? हिंदी में किया गया पाठ क्या सही नहीं होता? भैया, जिस भाषा में जो भक्ति की गई है उस भाषा में ही भाव विशेष रूप से आते हैं। मानतुंग आचार्य महाराज ने संस्कृत में भगवान की, आदिनाथ भगवान की भक्ति करी, भाषा का संस्कृत का उपयोग किया उन्होंने, उसमें भी अपने भावों को ठीक ठीक डाल पाए। अब यदि हम उनका ट्रांसलेशन भी करते हैं, हिंदी वर्जन करते हैं या इंग्लिश में करते हैं, अब तो 175 अनुवाद हो चुके हैं भक्तांबर के, विभिन्न भाषाओं में हो चुके हैं, तो उनमें वो चीज़ नहीं आ पाती है अनुवाद करने में जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट में होती। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जिस भाषा में कहा गया उसी भाषा में उपयोग करें। और दूसरी बात यह है कि हर एक भाषा का अपना रिदिम होता है, हर एक भाषा की अपनी ध्वनि होती है, अपना उच्चारण होता है, और ध्वनि का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग अपने यहाँ पर किया गया। दिव्य ध्वनि को भी ध्वनि रूप भी माना गया, मंदिरों में घंटे की ध्वनि करते हैं, विभिन्न प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण से हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। तो संस्कृत भाषा का जो उच्चारण है वो अलग प्रभाव देता है, और जो अन्य भाषाएं हैं उनका उच्चारण अलग प्रभाव देता है, इसलिए अधिक प्रभाव यदि आवश्यक है तो फिर हमें संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए, वो जाए। कोई महाराज जी बनना चाहे तो उसे दीक्षा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे वाह, राजस्थान में कोई दीक्षा ले रहा है? अभी तक तो संघ में कोई भी नहीं है, एकाध कोई महाराज हो, और बाकी तो राजस्थान के कोई भी नहीं है भैया। अब अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी, आपको आशीर्वाद दे देता हूँ। और दीक्षा लेने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, तत्व का अभ्यास करना चाहिए, संसार से विरक्ति होनी चाहिए, और परिचय और उपसर्ग सहन करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। ये 3 बातें अगर हम निरंतर अपने मन में बनाते चले जाएं तो फिर हो सकता है बन सकते हैं। भावना भाने में तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी बने तब भी भावना तो भाना चाहिए, सबको भाना चाहिए। उसमें लिखा है कि सच्चा गृहस्थ या सच्चा श्रावक वही है जो श्रावक के व्रतों का पालन तो करता है लेकिन हमेशा भावना भाता है कि मैं मुनि बनूं, महाव्रतों का पालन करूं, है अकेला रात्रि भोजन का त्याग, देखो आप, और भावना क्या भार है, मैं मेरे जीवन में महाव्रतों का पालन। भावना भाने में क्या लग रहा, कोई अपना कुछ भी, मतलब कोई उसमें न पाप लग रहा है न कोई अपना कुछ पैसा लग रहा है, उसमें
सिर्फ भावना भाने से भी पूरे जीवन अगर कोई भावना भाता रहे, अणुव्रतों का पालन करते हुए महाव्रतों की भावना भाए, तब तो बहुत बड़ी चीज होती। कल के प्रश्न है, महाराज पार्श्वनाथ भगवान की फण वाली मूर्ति और बिना फण वाली मूर्ति में क्या अंतर है? ये अंतर है कि एक में फण होते हैं, एक में फण नहीं होते, और भगवान तो वही है, भगवान में तो कोई अंतर नहीं। जैसा केवल ज्ञान उनको हुआ, वैसे केवल ज्ञान इनको हुआ। अब भैया आपको अगर सांप देखना हो तो सांप देख लो, भगवान देखना हो तो वहीं पर भगवान बैठे, अंतर कुछ भी नहीं है। दोनों दोनों मूर्तियां वीतराग अवस्था की हैं, दोनों अरहंत अवस्था की हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि एक उपसर्ग अवस्था की है और एक अरहंत अवस्था की है, नहीं।